واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من اهدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وإنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا گزشتہ خطبے میں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں دو گروہوں کا ذکر تھا، ایک وہ جو اپنی عزتیں اللہ ہی سے حاصل کرتے ہیں، ان کی تمام دعاؤں کا رخ، ان کی التجاؤں کا رخ آسمان کی طرف رہتا ہے، اور عمل صالح ان کے پاکیزہ کلمات کو مزید رفعتیں بخشتا رہتا ہے، इसी आयत के दूसरे हिस्से में उन लोगों का भी जिक्र था और है जो अल्लज़ीना यमकुरून सय्यिआत है, जो गंदी और बुरी और नापाक तदबीरें करते हैं, और उनके मुतालिक फरमाया लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए बहुत ही सख्त अजाब मुकद्दर है। ये मकर सय्यिअ से क्या मुराद है, इस सिलसिले में जब हम इसी सूरत फातिर के आखिर पे पहुंचते हैं तो कुरान करीम खुद मकर सय्यिअ के मजमून को खोल देता है। फरमाता है वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा की बड़ी बड़ी भारी कस्में खाई और ये कहा कि अगर उनके पास कोई डराने वाला खुदा की तरफ से आया हो या आ जाए तो यकीनन वो पहली कौमों से ज्यादा हदायत पाने वाले हो जाएंगे, लेकिन अफसोस इनके हाल पर कि जब इनके पास डराने वाला आया तो नफरतों के सिवा इन्होंने किसी चीज में तरक्की नहीं की। निस्तिकबारन फिलहाल, क्योंकि ये जमीन में तकब्बुर इख्तियार करने वाले लोग हैं, तकब्बुर इख्तियार करते हुए इन्होंने आने वाले का इनकार कर दिया। वह मकर सही, और इस वजह से इनकार किया कि ये बुरी तदबीरें जानते थे। ऐसे लोग थे जिनको ये घुमंड था कि हम जमीन में बड़े भी हैं और साजिशों और झूठी स्कीमें बनाने में हमारा कोई जवाब नहीं, हर किस्म की गंदी तस्वीरें हम बनानी हमें खूब आती हैं, इसलिए जिस कौम के पास ताकत भी हो, बड़ाई भी हो और मकर और फरेब की तस्वीरें बनाने की भी माहिर हो, उसको खुदा की तरफ से आने वाले किसी शख्स की परवाह नहीं रहती। वे समझते हैं कि यही दो चीज़ें हैं जो दुनिया में कामयाबी का गुरु हुआ करती हैं, जिनके पास दुनिया की ज़ाहरी बड़ाई आ जाए और उसके अलावा वो साजिश की दिमाग भी रखते हैं, और गंदी मकर फरेब की तस्वीरें बनाना उनका रोज़मर्रा का काम हो, वो कैसे ईमान ला सकते हैं खुदा की तरफ से आने वाले एक आजिज बंदे पर। तो कौम की सारी नफसियाती हालत जो उसे इनकार पर आमादा करती है, उसका नक्शा इस आयत के एक छोटे से टुकड़े में खींच दिया गया। निस्तिकबारन फिलवाले, इस्तिकबारन फिलवाले व मकर सही, इन दो चीज़ों ने कौम को हदायत पाने से महरूम कर दिया। लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं, वला यही कुल मकर सही है इल्ला बेहले, कि गंदी और नापाक तदबीर तो बनाने वाले के सिवा किसी को घेरे में नहीं लाया करती, किसी का घेरा नहीं डालती, किसी को नाकाम और जलील और रुस्वा नहीं करती, किसी को हलाक नहीं करती, मगर उसी को जिसने वो तदबीर बनाई हो। फहल यंजुरूना इल्ला सुन्नत अल्लवलीन, बस वो क्या गुजरे हुए लोगों के ऊपर जो वाकयात गुजर गए उनके सिवा कुछ चाहते हैं, क्या वो ये ख्याल करते हैं कि इस दफा वो वाकयात उन पर नहीं गुजरेंगे जो पहली कौमों पर गुजरते रहे जिनकी तारीख गवाह है, क्या वो खुदा से किसी और सलूक की तवक्को रख रहे हैं। फलन तजद सुन्नतिल्लाह तब्दीला, लेकिन याद रखें और ऐ मुखातिब तू याद रख कि तू खुदा की सुन्नत में कभी कोई तब्दीली नहीं देखेगा। वलन तजद सुन्नतिल्लाह तहवीला, और खुदा की तदबीर में और खुदा की सुन्नत में तू कभी कोई टाल मटोल नहीं देखेगा। वाज़े और यकीनी और गैर मुबद्दल सुन्नत जैसे हमेशा से काम करती चली आई है वैसे ही आज करेगी। इस आयत में जो एक काबिले तवज्जो चीज़ ये है, जो काबिले तवज्जो बात है, एक ये है कि इल्ला सुन्नत अल अव्वलीन में तो पहलों की सुन्नत का जिक्र फरमाया गया था, कि क्या ये पहलों की सुन्नत के सिवा भी किसी सुन्नत की तवक्को रखते हैं। فلان تجد سنت اللہ ہے تبدیلہ میں پہلو کی سنت کے دہرائے جانے کی بجائے اللہ کی سنت کا ذکر فرما دیا گیا. تو مراد یہ ہے کہ وہ پہلے لوگوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں اور پہلے لوگوں کو جیسے انجام سے بے خبر ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انجام ویسا نہیں ہوگا, اور چونکہ یہ انجام خدا کی طرف سے آیا کرتا ہے اس لیے جب نتیجہ ظاہر فرمایا تو وہاں سنت الاولین کی بجائے سنت اللہ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جب پہلے لوگوں نے ایک خاص طریق اختیار کیا, ایک خاص رنگ ڈھنگ اپنایا, تو ان کی ہلاکت خدا کی تقدیر کے نتیجے میں ہوئی تھی, ایک طبی نتیجے کے طور پر نہیں ہوئی. اس لیے مضمون کو بدل کر سنت الاولین کی بجائے نتیجے کے وقت اللہ کی سنت کا ذکر فرما دیا. یہ چونکہ پہلی قوموں کی سنت پر چل پڑے ہیں اور توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ پہلی قومیں تو بے وقوفی کی وجہ سے یا کسی اور مقصد, کسی اور کوتاہی کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں, ہم زیادہ ہوشیار ہیں, ہم زیادہ بڑے ہیں, ہم زیادہ چلاکیاں جانتے ہیں, ہم اس انجام سے بچ جائیں گے. یہ وہم پیدا ہوتا ہے بد اسکیمیں بنانے والوں کے دماغ میں اور مکر صحیح کرنے والوں کے دماغ میں. اگر وہ یہ یقین رکھتے کہ اللہ کی طرف سے پھر ایک سنت جاری ہوا کرتی ہے تو کبھی وہم و گمان بھی ان کو نہ آتا کہ ہم اپنی بد تدبیروں کے بد نتائج سے بچ جائیں گے. تو چونکہ وہ پہلوں کی سنت پر دھیان اس طرح کرتے ہیں جیسے کچھ گزری ہی قومیں تھیں, ان سے یہ بیوقوفی سرزد ہو گئی, ان سے وہ بیوقوفی سرزد ہو گئی, ایسے بد بڑے بڑے بد لوگ تھے, ان کی تاریخ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ان سے یہ حماقت ہوئی, یہ نہ ہوتا تو نیپولین نہ مارا جاتا, وہ نہ ہوتا تو فرعون کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوتا, تو وہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے ان کی غلطیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی سنت کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے, اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب یہ قومیں, دنیاوی قومیں اللہ کے مقابل پر آتی ہیں تو پھر اللہ کی بھی ایک سنت جاری ہوا کرتی ہے. اس سنت میں وہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے, اس سنت میں وہ کبھی کوئی ٹال مٹول نہیں پائیں گے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. وہ کیوں غور نہیں کرتے اور کیوں جائزہ نہیں لیتے اپنے گرد و پیش کا, وہ قوموں کی اس دبی ہوئی تاریخ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے جو ہلاک ہو کر زیر زمین دفن ہو چکی ہیں. یہ سیرو فی الارض ہے, دنیا میں پھریں اور دیکھیں کہ پرانی قوموں کا کیا انجام ہوا. وکانو اشد منہم قوۃ, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے مقابل پر خدا کے آنے والے بندے بظاہر ان سے بہت زیادہ کمزور تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء. اب پھر اسی طرز میں جس طرح پہلے قوم کی سنت کا ذکر کر کے اچانک سنت کا مضمون خدا کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا تھا, اب ان کو اس قوم کو اشد منہم قوۃ بیان کرنے کے بعد کہ وہ بہت بڑی طاقتور قومیں تھیں, اچانک مضمون کو پھر خدا کی طرف پھیر دیا. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض. لیکن بدقسمتی سے ان کی بدقسمتی سے ان کا مقابلہ خدا سے پڑ گیا. یعنی مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی قوت پر اگر صرف انحصار کیا جائے اور عام تاریخی مطالعہ ہو تو نتیجہ یہی نکلنا چاہیے اس زمانے کے بیوقوف نکالتے ہیں کہ جب بڑی قوموں کی چھوٹی قوموں سے ٹکر ہوتی ہے تو ان کو ہلاک کر دیا کرتی, جب زیادہ مکار اور چالاک لوگوں کی سادہ لو انسانوں سے لڑائی ہوتی ہے تو مکار اور چالاک غالب آ جایا کرتے ہیں, یہ تبھی نتیجہ ہے. تو فرمایا وہ پہلے تو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے جو آج ہیں, لیکن اس لیے وہ ناکام اور ہلاک ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے مقابل پر زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی, کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. وَإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا, وہ علیم بھی ہے اور قدرت بھی بہت رکھتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ अगर अल्लाह लोगों की बदअमालियों पर लोगों को पकड़े तो जमीन पर किसी जानदार को भी ना छोड़े, वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन वो एक मुद्दत मुअय्यना तक जो उनके लिए मुकद्दर है उनको ढील देता चला जाता है। फैज़ा जा अजलुहुम फइन्नल्लाह काना बिइबादिहि बसीरा, जब उनकी हलाकत का वक्त आ जाता है फइन्नल्लाह काना बिइबादिहि बसीरा, उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत नजर रखने वाला होता है। अमूमन तर्जमा करने वालों का जहन इस तरफ जाता है कि उनकी बदामालियों पर नजर रखकर उनको सजा देता है, और वो ये समझ उस वक्त वो जानते हैं कि हाँ अल्लाह ताला खूब बसीर था। एक ये माना भी मुमकिन है, लेकिन ज्यादा मौजूं बरमहाल माना इसके बरक्स है, क्योंकि बेइबाद ही बसीरा में एक प्यार का इजहार पाया जाता है, अपने बंदों पर नजर रखने वाला है। मुराद ये है कि कौमी अजाब के वक्त भी, जबकि आलमी तौर पर इंसान पकड़ा जाए या कौमी तौर पर कोई बात जुग्राफियाई कौमें पकड़ी जाएं, इस किस्म के वसी पैमाने के आने वाले अजाबों के वक्त भी अपने बंदों पर अल्लाह प्यार की नजर रखता है और उनको बचाता है इन मुसीबतों से। वरना तो कौमी पकड़ के वक्त ये खतरात पर दरपेश होते हैं कि कमजोर लोग जो पहले ही बेचारे ताकतवर दुश्मनों के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, सितम उठा रहे हैं, वो लोग और भी ज्यादा मुसीबतों का शिकार ना हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा की तरफ से आने वाले अजाबों में एक इम्तियाज तुम देखो, आम अजाबों की तरह वो सबको बराबर नहीं पीसेंगे, बल्कि चूंकि अपने बंदों की हिफाजत के लिए, अपने बंदों से प्यार के इजहार के लिए खुदा ऐसा करता है, इसलिए फिर ऐसे हालात में उन पर नजर भी रखता है, उनको उन मुसीबतों से बचाता भी है। ये वो आयात करीमा हैं जिनके जिक्र में बज़ाहिर तो इंसान का दिमाग हजारों साल की मजहबी तारीख की तरफ मुंतकिल हो जाता है, लेकिन एक अहमदी की नज़र से देखा जाए तो यूं मालूम होता है कि कुरानी तारीख आज हमारे सामने इस तरह गुजर रही है, इस तरह दोहराई जा रही है जैसे एक फिल्म चलाई जा रही है। वो जमाने जो खोए गए थे, वो कौमें जो जमीन में पैवस्त होकर तहखाक सो भी चुकी थी मुद्दतों से, किस्से और कहानियां बन चुकी थी, उनकी तारीख भी जिंदा हो रही है और उन कौमों की तारीख भी जिंदा हो रही है जिन कौमों को हलाक करने के लिए ये गड़े मुर्दे फिर उठ खड़े हुए। लेकिन ये जिंदगी जो मकरूह सही करने वालों की जिंदगी है, ये एक आजी जिंदगी है, और वो जिनको हलाक करने के लिए दरपाए हैं वो इन्हीं हालात में से हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। इन्नल्लाह कान बेइबादिही बसीरा, इसलिए जिंदगी पा जाएंगे कि अल्लाह अपने बंदों पर प्यार की नजर रखता है और कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा करता। यह है मजमून इस आयत का जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, या इन चंद आयात का। इस सिलसिले में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद मुतल्लिका इक्तिबासात भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि बावजूद इसके कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से मैं मुसलसल कौम को मुतनब्बे कर रहा हूँ कि अपनी हलाकत के सामान अपने हाथों से ना करो, तुमसे पहले बड़ी बड़ी कौमें गुजरी हैं, बड़े बड़े ताकतवर आए हैं, बड़े बड़े फिरौन इस दुनिया में पैदा हुए और चले भी गए, और हर एक ने उनमें से कोशिश की थी कि खुदा की तरफ से उठाई जाने वाली आवाज़ को दबा दें और हलाक कर दें, और जब भी उन्होंने ऐसा किया वो हमेशा खुद हलाक हुए। इसलिए बाज आओ और अपनी इन हरकतों से तौबा करो और इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों को भी कभी ज़ाया नहीं फरमाया करता, बे इंतहा रहम करने वाला, बेहद तौबा कबूल करने वाला खुदा है। लेकिन इस बात की समझ नहीं आई किसी को, और दिन ब दिन वो पहले से ज्यादा अपनी शरारत में बढ़ते चले गए, यहां तक कि अब ये हालत पहुंच चुकी है कि बराह रास्त कलिमा तैयबा पे हाथ डालने का कौम ने फैसला किया हुआ है, यानी कौम के चंद शरीर सरबराहों ने। लेकिन चूंकि वो कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि कौम उनके हाथ नहीं रोक रही, इसलिए उनके शर से कौम भी फिर बच नहीं सकेगी। इसलिए अब मैं इस कौम को मुखातब करके कहता हूं कि अपने बड़ों के हाथ उस जुल्म से रोक लो जो लाजमन तुम्हें हलाक कर गया, क्योंकि अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि अहमदी कितने हैं और उसके मुकाबले पर अहमदियों के दुश्मन कितने हैं। अगर सारी दुनिया भी कलिमा तैयबा को मिटाने की कोशिश करेगी तो लाजमन कलिमा उस दुनिया को हलाक कर देगा। आज कलिमा की ताकत का गैर तौहीदी ताकतों से मुकाबला हो गया। आज कौम नंगी होकर और खुलकर सामने आ गई है कि उनके मुद्दा और मकासद क्या थे। इस्लाम की तारीख का यह सबसे दर्दनाक दौर है कि इस्लाम के नाम पर इस्लाम के दुश्मनों की तारीख दोहराई आ रही है। एक वो दौर था कलिमा तैयबा मिटाने का जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा फरमाया और कलिमा की हिफाजत करने वाले मक्के की गलियों में घसीटे गए। उन पर ऐसे ऐसे मजालिम हुए कि उनका जिक्र पढ़ने से ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। हजरत बिलाल का वक्त याद करें कि किस तरह कलिमा के जुर्म में उनको मक्के की संगलाब जमीनों पर इस तरह घसीटा जाता था जिस तरह एक कुत्ते मरे हुए कुत्ते को टांगों में रस्सी डालकर बच्चे घसीटते, उनको और बाद और गुलामों को तपते हुए सहराओं में जबकि दर्जा हरारत 140 दर्जा पहुंच जाया करता था, तपती रेत पर लिटाकर फिर गर्म पत्थर की सिले उनकी छातियों पर रखी जाती थी और कहा जाता था कि अब भी तौबा करोगे कि नहीं कलमा तैयबा से। और रावी बयान करते हैं कि हजरत बिलाल इस हालत में बेहोश हुआ करते थे कि असद हो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह की आवाज उनकी बुलंद हो रही होती थी आखिर वक्त तक, और जब होश आती थी तो पहला कलमा खुद बखुद मुंह से निकलता था असद हो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। कैसा बदबख्ती का जमाना है कि वो दौर जिसमें दुश्मन इस्लाम ने कलमे को मिटाने का फैसला किया और इस राह में इंतहाई मजालिम अख्तियार किए, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों का दौर और उनका किरदार आज के मुसलमानों ने अपना बनाना शुरू कर दिया और सारे पाकिस्तान की मस्जिद में ऐलान हो रहे हैं कि हम अहमदियों से कई मस्जिद से इनके दिलो दीवार से कलमा मिटा के छोड़ेंगे। और हुकूमत के नुमाइंदे, मेरे पास तस्वीरें हैं बेशुमार ऐसी पड़ी हुई, वो सीढ़ियां लाकर दीवारों पर चढ़ चढ़ के कलमे पर स्याही फेर रहे हैं। कोई हया नहीं, कोई खौफ नहीं खुदा का, कुछ पता नहीं कि अपनी क्या तस्वीर बना रहे हैं। एक बात बहरहाल आखिरी और यकीनी है कि जमात अहमदिया कलमे की हिफाजत में जान देगी और हरगिज किसी कीमत पर इस बात को कबूल नहीं करेगी, आमिर हो या गैर आमिर, एक दुनिया की ताकत हो या सारी दुनिया की ताकत हो, हरगिज कोई अहमदी किसी आमिर की कोई ऐसी बात कबूल नहीं करेगा जो दीन के असूलों पर हमलावर हो रही। और कलमा तैयबा तो दीन की जान है, असूल तो दूसरी बातें हैं, ये तो वो मरकजी हिस्सा है जिससे सारे असूल निकलते हैं, वो बीच की जड़ है जिससे आगे जड़ें टूटती। इसलिए इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई अहमदी कलमा तैयबा को छोड़ देगा या कलमा तैयबा को मिटाने देगा इन जालिमों के हाथों। अगर कोई हुकूमत बदकिरदार खुद मिटाती है तो देखें उस हुकूमत के साथ फिर खुदा क्या सलूक करता है। लेकिन हुकूमत के अलावा जो लोग हैं, हाँ अहमदी कितने इस राह में मारे जाए उनको नहीं हाथ डालने देंगे। बाज़ उसूल हैं जिनके नतीजे में हमने ये फैसला किया है कि अगर हुकूमत के नुमाइंदे किसी कानून के ताबे मिटाते हैं तो मुज़ाहमत नहीं की जाएगी लेकिन कलमा लिखा जाएगा।
حکومت کا یہ حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کلمہ چھوڑنا ہے، اس راہ میں جو کچھ گزرتی ہے گزرے گی. اس لیے ان دو باتوں کے درمیان میں رہنا ہوگا. کسی عامر کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی کہ تم کلمہ چھوڑ دو اور قانون تمہیں منع کر رہا ہے اس لیے اپنا یہ حق اپنے ہاتھوں سے ترک کر دو، جو چاہے وہ کر گزرے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا خدا اس سے زیادہ طاقتور ہے یا وہ ہمارے خدا سے زیادہ طاقتور ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک وقت کے جبار عامر نے اسی قسم کا ایک دفعہ پیغام بھیجا تھا، اور اس یمن کے بادشاہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا تھا کہ تمہاری گردن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے حکم سنتے ہی چلے آؤ ہماری طرف. چند دن دعا اور استخارے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ پیغام بھیجا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ میرے خدا کے ہاتھ میں اس کی گردن ہے، اس لیے میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے آج اسے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری دنیا کی طاقتوں کی گردنیں ہیں. پتہ نہیں کیوں دنیا کے متکبر ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینا ایک بہت ہی بڑا ایک جہالت کا کام ہے، خودکشی ہے. اور جب انسان ایسے مقامات پر فائز ہو جہاں قوم کی نمائندگی کرتا ہو تو یہ قومی خودکشی بن جاتی ہے. اس لیے ہم تو ایک حرف نصیحت کے طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل نہ کرو. اگر تم کلمے مٹاؤ گے تو خدا کی قسم، خدا کی غیرت کا ہاتھ تمہیں لازماً مٹا دے، اور پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے. لیکن چونکہ تمہارے دکھ بھی پھر ہمیں پہنچ رہے ہیں، اس لیے ہم بار بار تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے افعال سے، ایسے بد افعال سے باز آ جاؤ. اتنی جہالت، اتنا اندھا پن، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے قول کے مطابق مسلمان کلمہ کی حفاظت میں مارے جا رہے ہوں گے، اور نہ کافر اور جن کو غیر مسلم کہتے ہیں وہ کلمہ کی حفاظت میں مارے جا رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو مسلمان بنتے ہیں وہ کلمہ مٹا رہے ہوں گے. یہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات کا میں نے ذکر کیا تھا جو صورت حال کے اوپر چسپاں ہونے والے ہیں، ان کو پڑھ کر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں خدا تعالی ان متکبر مولویوں کا تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا وہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے. خدا تعالی ان متکبر مولویوں کا تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا کہ وہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے اور شریروں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالتا ہے. شریر انسان کہتا ہے کہ میں اپنے مکروں اور چالاکیوں سے غالب آ جاؤں. مکر صحیح کا ذکر جو پہلے قرآن کریم میں گزرا ہے وہی اسی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے. اپنے مکروں اور چالاکیوں سے غالب آ جاؤں گا اور میں راستی کو اپنے منصوبوں سے ہٹا مٹا دوں گا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اس سے کہتی ہے کہ اے شریر، میرے سامنے اور میرے مقابل پر منصوبہ باندھنا تجھے کس نے سکھایا؟ کیا تو وہی نہیں جو ایک ذلیل قطرہ رحم میں تھا کیا تجھے اختیار ہے جو میری باتوں کو ٹال دے؟ پھر آپ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں. میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودہ اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے. میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے. اے لوگوں، تم یقین سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا. اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے और तुम्हारे छोटे और तुम्हारे बड़े सब मिलकर मेरे हलाक करने के लिए दुआएं करें, यहां तक कि सजदे करते करते नाक गल जाए और हाथ शल हो जाए, तब भी खुदा हरगिज तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा और नहीं रुकेगा जब तक वो अपने काम को पूरा ना करे। और अगर इंसानों में से एक भी मेरे साथ ना हो तो खुदा के फरिश्ते मेरे साथ होंगे, और अगर तुम गवाही को छुपाओ तो करीब है कि पत्थर मेरे लिए गवाही दें। बस अपनी जानों पर जुल्म मत करो, काजिबों के मुंह और होते हैं और सादिकों के और। खुदा के मामूरीन के आने के लिए, खुदा के मामूरीन के आने के लिए भी एक मौसम होते हैं, फिर जाने के लिए भी एक मौसम। बस यकीनन समझो कि मैं ना बे मौसम आया हूं और ना बे मौसम जाऊंगा। खुदा से मत लड़ो, तुम्हारा ये काम नहीं कि मुझे तबाह कर दो। फिर आप फरमाते हैं, चुनाचे मैं बार बार कहता हूं कि तौबा करो कि जमीन पर इस कदर आफात आने वाली हैं कि जैसा कि नागहानी तौर पर एक स्याह आंधी आ जाती है, जैसा कि नागहानी तौर पर एक स्याह आंधी आ जाती है, आंधी आती है, और जैसा कि फिरौन के जमाने में हुआ कि पहले थोड़े निशान दिखलाए गए और आखिर वो निशान दिखलाया गया जिसको देखकर फिरौन को भी कहना पड़ा कि आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल। खुदा अनासिर अरबा में से हर एक उनसर में निशान के तौर पर एक तूफान पैदा करेगा और दुनिया में बड़े बड़े जल्जले आएंगे, यहां तक कि वो जल्जला आ जाएगा जो कयामत का नमूना है। तब हर कौम में मातम पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने वक्त को शनाख्त नहीं किया। फिर हुजूर फरमाते हैं, दुनिया में एक नजीर आया पर दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा। दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े जोरावर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा। ये इंसान की बात नहीं, खुदा ताला का इल्हाम और रब जलील का कलाम है, और मैं यकीन रखता हूं कि उन हमलों के दिन नजदीक हैं, मगर ये हमले तेगो तबर से नहीं होंगे और तलवारों और बंदूकों की हाजत नहीं पड़ेगी, बल्कि रूहानी असलहा के साथ खुदा ताला की मदद उतरेगी और यहूदियों से सख्त लड़ाई होगी। वो कौन है? इस जमाने के जाहिर परस्त लोग जिन्होंने बिल इत्तेफाक यहूदियों के कदम पर कदम रखा है। उन सबको आसमानी सैफुल्लाह दो टुकड़े करेगी। फरमाते हैं, मैं सच सच कहता हूं कि यही हाल इस जमाने के जफाकार मुनकरों का होगा। हर एक शख्स अपनी जुबान और कलम और हाथ की शामत से पकड़ा जाएगा, जिसके कान सुनने के हों सुने। फिर फरमाते हैं, याद रखो कि आखिर ये लोग बहुत शर्मिंदगी के साथ अपने मुंह बंद कर लेंगे और बड़ी नदामत और जिल्लत के साथ तकरीर के जोश से दस्तकश होकर ऐसे ठंडे हो जाएंगे कि जैसे कोई भड़कती हुई आग पर पानी डाल दे। लेकिन इंसान की तमाम काबिलियत और जीरकी और अकलमंदी इसमें है कि समझाने से पहले समझे और जितलाने से पहले बात को पा जाए। अगर सख्त मगजखोरी के बाद समझा तो क्या समझा? बहुतों पर अनकरीब वो जमाना आने वाला है कि वो काफिर बनाने और गालियां देने के बाद फिर रुजू करेंगे और बदजन्नी और बदगुमानी के बाद फिर हुस्न जन पैदा करेंगे। फिर आप फरमाते हैं, खुदा ने मुझे बार बार खबर दी है, खुदा ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी महब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिले को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालिब करेगा और मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म व मारिफत में कमाल हासिल करेंगे कि वो अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलायल और निशानों की रूह से سب کا منہ بند کر دیں گے. ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. بہت سی روکھیں پیدا ہوں گی اور ابتلاء آئیں گے مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا. سو اے سننے والوں ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشخبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. آئندہ چند روز میں خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں جو جماعت پر حالات گزر رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر دعائیں کریں بہت کثرت کے ساتھ اور عاجزی اور ریاضداری کے ساتھ. اور آئندہ چند ماہ میں بھی مسلسل خصوصی دعائیں جاری رکھیں کیونکہ آئندہ چند ماہ جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی مقام رکھتے ہیں. اور میں اللہ کی حضور سے امید رکھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے انشاءاللہ جماعت کو عظیم خوشخبریاں عطا کی جائیں گی.